नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के बहुत ही अहम, महत्वपूर्ण और गहरे विचार पर बात करेंगे, कर्मकांड नहीं भावना प्रधान। हमारे पास श्रोत के रूप में पूज्य गुरुदेव का इसी विषय पर दिया गया एक उद्बोधन है। अक्सर हम देखते हैं लोग साधना पूजा तो बहुत करते हैं, पर मन में एक सवाल रहता है कि वो शांति या वो बदलाव क्यों नहीं मिल रहा जिसकी उम्मीद थी।
हाँ, ये दुविधा तो बहुत आम है और आज की चर्चा इसी पर है कि हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है उसमें ये बाहरी क्रियाएं जिन्हें हम कर्मकांड कहते हैं, पूजा, जप, हवन वगैरह, और हमारी जो आंतरिक अनुभूति है, मतलब हमारा भाव योग, हमारी सच्ची श्रद्धा, भावना, इनके बीच आखिर रिश्ता क्या है, पूज्य गुरुदेव इसी गुत्थी को सुलझाते हैं।
बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि पूज्य गुरुदेव क्यों भावना को, हमारी अंदरूनी नीयत को, इन बाहरी क्रियाओं से ज्यादा जरूरी मानते हैं। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। गुरुदेव कितने सरल उदाहरण देते हैं, जैसे उन्होंने कलम का उदाहरण दिया। लिखने के काम आती है।
हाँ।
पर सिर्फ कलम हाथ में लेने से कोई लेखक तो नहीं बन जाता ना। उसके लिए तो ज्ञान चाहिए, लिखने का भाव चाहिए।
बिल्कुल।
या जैसे साइकिल है, चलाने के लिए साइकिल तो चाहिए, पर पैरों में ताकत ना हो, संतुलन साधना ना आता हो तो कैसे चलेगी।
बिल्कुल सही। और यही बात, यही सिद्धांत अध्यात्म पर भी लागू होता है। ये जो क्रिया योग है, मतलब हमारे पूजा पाठ के तरीके, मंत्र जप, हवन, ये सब, ये एक तरह से औजार है।
अच्छा, औजार जैसे?
हाँ, जैसे कलम या छेनी हथौड़ा, ये माध्यम है। इनका असली लक्ष्य, इनका मकसद है भाव योग को जगाना, हमारी अपनी आंतरिक भावना, हमारी चेतना का विकास करना। गुरुदेव ये भी स्पष्ट करते हैं कि जड़ वस्तुएं, जैसे मान लीजिए जलता हुआ दीपक है या हमने सूर्य को जल चढ़ाया, तो ये पानी या वो दीपक, ये सीधे सीधे हमारी आत्मा को, हमारी चेतना को फायदा नहीं पहुंचा सकते।
तो फिर?
वो प्रतीक है हमारी भावना को जगाने के, उसे एकाग्र करने के इशारे हैं बस।
और यहीं पर मुझे लगता है गुरुदेव एक चेतावनी भी देते हैं कि अगर हम सिर्फ इन्हीं बाह्य क्रियाओं में अटक गए, मतलब विधि विधान को ही सब कुछ मान लिया और अंदर जो भाव है उस पर ध्यान नहीं दिया, तो फिर निराशा हाथ लग सकती है।
हाँ बिल्कुल।
तभी तो लोग कहते ना कि भाई इतने साल पूजा की पर शांति नहीं मिली या कोई लाभ नहीं हुआ।
सही कहा। ऐसा शायद इसीलिए होता है क्योंकि वो क्रिया योग का जो असली मकसद था, मतलब भाव योग का जागरण और ईश्वर के प्रति एक समर्पण का भाव, उसे कहीं ना कहीं भूल जाते हैं लोग। इस बात को समझने के लिए अहम, आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है।
हाँ, वो कैसे?
देखिए, परमात्मा क्या है? वो चेतना स्वरूप है, विचार परक है, भावना परक है। और हमारी जो जीवात्मा है, हमारी अपनी आत्मा, वो भी तो चेतन है
जी।
इसीलिए गुरुदेव समझाते हैं कि आत्मा का परमात्मा से जो जुड़ाव है वो भी चेतना के स्तर पर ही होगा, भाव का भाव से मिलन होगा। ये सिर्फ भौतिक वस्तुओं से, जैसे हमारे इस शरीर से या पूजा की सामग्री से, उस तरह से नहीं हो सकता।
मतलब परमात्मा क्योंकि चेतना है, तो उससे जुड़ने के लिए हमें भी अपने भावों को, अपनी चेतना को परिष्कृत करना होगा।
बिल्कुल। हार्ड मास के शरीर वाले ईश्वर की कल्पना करना या उसे इन आंखों से देखने की कोशिश करना, ये गुरुदेव के अनुसार एक तरह का भौतिकवाद ही है, वो अध्यात्म नहीं है।
अच्छा, ये बात तो सोचने वाली है। तो फिर अगर कर्मकांड, जिसे हम माला फेरते हैं या धूप दीप जलाते हैं, अगर ये सीधे सीधे आध्यात्मिक लाभ नहीं देते, तो फिर इनका असली उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं हम ये सब?
देखिए, गुरुदेव इसे ऐसे समझाते हैं जैसे चरखा कातने का उदाहरण दिया उन्होंने। चरखा कातने से सूत मिलता है, कुछ कमाई हो सकती है ना।
हाँ, भौतिक लाभ।
हाँ, वैसा सीधा भौतिक लाभ इन क्रियाओं से आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं मिलता। मतलब सिर्फ माला फेरने से शांति या कोई सिद्धि या मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं है।
तो फिर इनका प्रयोजन?
इनका असली मकसद है हमारी भावनाओं का विकास करना, उनका परिष्कार करना, उनको साफ करना, उनका शोधन।
यानी कर्मकांड भावनाओं को सुधारने का टूल है।
हाँ, कह सकते हैं। आध्यात्मिक शांति हो, सिद्धि हो, मुक्ति हो, ये सब तो गहरे भाव और आत्मा की शुद्धि से जुड़े हैं। कर्मकांड जरूरी हैं, उनकी अपनी जगह है, वो हमें अनुशासन सिखाते हैं, मन को एकाग्र करने में मदद करते हैं।
लेकिन
भावना के बिना वो अधूरे हैं, अपंग हैं, जैसे प्राण के बिना शरीर। गुरुदेव कहते हैं क्रिया और भावना दोनों का समन्वय जरूरी है, तभी साधना पूरी होती है।
तो इसका मतलब अध्यात्म की जो यात्रा है वो असल में आत्मशोधन से शुरू होती है, मतलब अपनी आत्मा पर जो मैल चढ़ा है, गलत आदतों का, विचारों का, उसे हटाना।
बिल्कुल, पूजा पाठ ये सब उसी सफाई के, उसी आत्म परिष्कार के औजार हैं। जैसे मूर्तिकार छेनी हथौड़े से पत्थर तराशता है ना, वैसे ही
गुरुदेव ने पंच कर्मों का उदाहरण भी दिया है, पवित्रीकरण, आचमन, शिखा बंधन, प्राणायाम, न्यास।
हाँ, ये तो हम करते हैं पूजा में।
हाँ, पर ये केवल पानी से अंग धोना या खास तरह से बैठ जाना बस इतना ही नहीं है, इनके बहुत गहरे सांकेतिक अर्थ हैं। ये सब आंतरिक शुद्धि की ओर इशारा करते हैं।
जैसे
कोई एक उदाहरण,
जैसे आचमन है, जब हम जीवा के स्पर्श का विधान करते हैं तो उसका गहरा मतलब सिर्फ पानी से कुल्ला करना नहीं है।
अच्छा, तो क्या है?
उसका मतलब है आहार की शुद्धि, यानी हम जो खा रहे हैं वो ईमानदारी की कमाई का हो, अभक्ष्य चीजों का त्याग करें, और साथ ही वाणी की शुद्धि भी।
वाणी की शुद्धि मतलब
कड़वा ना बोलें, झूठ से बचें, किसी की निंदा ना करें, बल्कि अपनी वाणी से दूसरों को हौसला दें, उत्साह बढ़ाएं। ये है आचमन का असली मतलब।
अरे वाह, ये तो बहुत गहरा अर्थ है। और न्यास में जैसे आंखों का स्पर्श करते हैं।
हाँ बिल्कुल, वो भी सिर्फ पानी लगाना नहीं है, वो एक संकल्प है अपनी दृष्टि को पवित्र बनाने का। गुरुदेव कहते हैं कि हर स्त्री में माँ, बहन या बेटी का रूप देखो, उसे वासना की नजर से मत देखो। जब हमारी नजर ऐसी दिव्य और पवित्र हो जाती है, तभी तो हमें हर जगह कण कण में परमात्मा दिख सकता है। ये है असली दृष्टि का शोधन।
तो कुल मिलाकर सार यही निकलता है कि आध्यात्मिक उन्नति का जो रास्ता है वो कर्मकांडों के साथ साथ तो चलता है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा महत्व हमारी भीतरी शुद्धि का है, हमारे आत्मशोधन का है और सच्ची भावना के विकास का है।
बिल्कुल,
जैसा पूज्य गुरुदेव ने कहा, देवता बनकर ही देवता की पूजा की जाती है। मतलब पहले खुद को उन गुणों से, उन पवित्र भावों से भरना होगा। कर्मकांड साधन है।
हाँ, साधन है।
और साध्य है आत्मा का निर्मल होना और ईश्वर के प्रति सच्चा भाव समर्पण।
तो ये बात एकदम स्पष्ट हो गई। बिल्कुल, और इस पूरी चर्चा के बाद मुझे लगता हम सबके लिए सोचने वाली बात ये है कि हम अपनी रोज की जो पूजा पाठ या साधना करते हैं उसे किस नजरिए से देखें, कैसे करें।
हाँ, ताकि वो सिर्फ एक बाहरी रस्मादेगी ना रह जाए।
सही कहा, बल्कि हमारी आत्मा की उन्नति का, हमारे भावों की शुद्धि का एक वास्तविक जरिया बन सके। यही शायद गुरुदेव का संदेश है।